ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए क्षेत्रीय सहयोग में बिम्स्टेक के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा जी। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
अनिल जी। बंगाल की खाड़ी से बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है, तो भारत की विदेश नीति में बिम्स्टेक का क्या महत्व है?
बिम्स्टेक का भारत की विदेश नीति में काफी सारे महत्व हैं। पहला तो इस क्षेत्र की भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थिति को भी जोड़ता है। और भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट की जो हमारी पॉलिसी है और ये दोनों प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक मंच बन चुका है। और सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो मलक्का का जो जल डमरू मध्य है उससे जुड़ी बंगाल की खाड़ी और चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी ये एक प्रमुख आधार बन गया है। तो भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां अगर बढ़ानी हैं तो इसकी अपार संभावनाएं हैं क्योंकि लगभग 300 मिलियन लोग बंगाल की खाड़ी में रहते हैं। क्योंकि हमारे पास आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से सटे चार तटीय राज्य हैं जिनमें ये 300 मिलियन लोग रहते हैं। इसके साथ ही लगभग 45 मिलियन लोग पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। यदि ये दोनों क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए संभावना के द्वार खुल जाएंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का बिम्स्टेक एक अवसर प्रदान करता है क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं।
अनिल जी, भारत लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है जिसमें सागरमाला का एक बहुत बड़ा योगदान है और कोई संदेह नहीं है कि समुद्री व्यापार के लिए भारत के नजरिए से देखें तो ये बेहद जरूरी है। तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन भारत में आयोजित होना वैश्विक परिदृश्य में क्या मायने रखता है, क्या स्थान रखता है?
बिम्स्टेक की जो मीटिंग्स होती हैं वो रोटेशन में होती हैं और इस बार चूंकि भारत की टर्न थी तो इसलिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग यहाँ पर हो रही है। पिछली फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थाईलैंड में हुई थी। अब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो इसका जो समिट मीटिंग है वो थाईलैंड में फिर से होगा और उस समिट मीटिंग में एक बहुत ही अहम एमओयू है जिसपे हस्ताक्षर होने हैं। वो मैरिटाइम कोऑपरेशन का एक एमओयू है क्योंकि जो बिम्स्टेक के देश हैं वो देख रहे हैं कि आपसी व्यापार अगर बढ़ाना है तो इसके लिए सी की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और ये काफी दिनों से ये मुद्दा उनके विचाराधीन है और अभी जाकर उन्होंने उसके ऊपर सहमति बन चुकी है तो अगले समिट में ये एमओयू साइन हो जाएगा।
वाधवा जी, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने तथा व्यापक बनाने में भारत के लिए बिम्स्टेक की क्या भूमिका है और अभी जो सम्मेलन हो रहा है इनमें किन मुद्दों पर चर्चा होना भारत के लिए लाभप्रद होगा?
तीन मुद्दे ऐसे हैं जिससे भारत को लगता है कि बिम्स्टेक एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। पहली तो हमने देखा कि स्थापना के बाद भी बिम्स्टेक लंबे वक्त पर एक जड़ बनकर रह गया था क्योंकि 2014 तक बिम्स्टेक ज्यादा कुछ कर नहीं पाया लेकिन 2014 में जब ये स्पष्ट हो गया कि सार्क अब बिल्कुल कारगर नहीं रह गया और बंगाल की खाड़ी का आर्थिक और जो सामरिक महत्व बढ़ने लगा है तो दक्षिण एशिया के बिम्स्टेक सदस्यों ने इस क्षेत्रीय समूह के जरिए आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यही समय था जबकि चीन ने अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आगे बढ़ाया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिम्स्टेक के थ्रू भारत चीन का मुकाबला कर सकता है बिम्स्टेक देशों में क्योंकि बिम्स्टेक का अपना एक कनेक्टिविटी का एजेंडा बन चुका है। तीसरी बात यह है कि बिम्स्टेक के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। कोविड-19 की महामारी के बाद उसके बाद हमने देखा कि रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ उससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में खलल पड़ा और फिर वैश्विक आर्थिक दुष्प्रभावों को देखने को मिले। इन देशों के ऊपर कर्ज बढ़ते गए, इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती गई और फिर ऊर्जा की कमी इन सभी देशों को फैली, तो बिम्स्टेक देश खुद भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और धीरे धीरे ये जो बिम्स्टेक का क्षेत्र है ये इनसे उभर रहा है। लेकिन अभी भी खाद्य और ईंधन की महंगाई है, जरूरी सामान की किल्लत है और इन व्यापक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय एकीकरण और संगठित व्यवस्था को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो लास्ट समिट जो हुई थी उसमें इस पर काफी विचार हुआ था और पिछली जो मीटिंग हुई है थाईलैंड में उसमें जो 14 मुद्दे बिम्स्टेक ने अपने आप के लिए बना लिए थे फोकस पॉइंट्स, उसको घटाकर अब 7 मुद्दे बना दिए गए हैं ताकि केंद्र उस पर जो मुद्दे हैं उन पर निशाना केंद्रित रह सके और जो दस्तावेज जिन पे मंजूरी मिलेगी उनको भी मद्देनजर रखकर ही मंजूरी आगे बढ़ेगी। तो आगे की राह इस तरह से है कि आर्थिक और सुरक्षा की चिंताएं बिम्स्टेक देशों की दूर हों और बंगाल की खाड़ी के देश क्षेत्रीय संगठन बनाए और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की धुरी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ चुकी है, तो इसलिए यहाँ के जो देश हैं बंगाल की खाड़ी की देश हैं उनके आप में एक महत्वाकांक्षा भी बढ़ चुकी है, उसको पूरा करने के लिए बिम्स्टेक एक बहुत ही अहम एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है।
अनिल जी, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण पिछले वर्ष जुलाई में थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था और तब से लेकर अब तक वैश्विक परिदृश्य काफी बदल चुके हैं। खासतौर पे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े बदलाव देखे गए हैं और विश्व का एक बड़ा हिस्सा संघर्षग्रस्त भी है, तो आपको क्या लगता है कि किन विषयों पर ध्यान देना जरूरी है?
तो अभी हम देख रहे हैं कि जो जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि आज के समय में सबसे पहले हमें 4 या 5 मुद्दों पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक तो कनेक्टिविटी की उन्होंने बात करी, दूसरा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, तीसरा कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड बिजनेस, चौथा कोलैबोरेशन इन हेल्थ एंड स्पेस और 5वां था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कैपेसिटी बढ़ाना, और सोसाइटल एक्सचेंजेस। सोसाइटल एक्सचेंजेस मतलब पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा देना। तो ये सब अगर बिम्स्टेक कर पाए तो आगे चलकर इन देशों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा।
अनिल जी, चीन और पाकिस्तान को लेकर के बिम्स्टेक देशों के साथ किस तरह की सहभागिता के विषय महत्वपूर्ण होंगे इन बैठकों के लिए, खासतौर पे ऐसे समय में जब चीन लगातार अपना एक दायरा बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ जैसे भी हमारे अभी वर्तमान संबंध है उन्हें देखते हुए क्या क्या महत्वपूर्ण है?
चीन और पाकिस्तान बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है लेकिन बिम्स्टेक अपना जो महत्वपूर्ण रूप है वो चीन की जो पॉलिसीज है, जो बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव के तहत जो कोर्सिव पॉलिसीज चीन की बन चुकी है इस रीजन में
जी।
उसको काउंटर करने में बिम्स्टेक सक्षम है और उसकी अपनी कनेक्टिविटी पॉलिसीज और एक फ्रेमवर्क बन चुका है जिसके अंतर्गत 162 प्रोजेक्ट बिम्स्टेक में अग्री कर चुके हैं और आगे चलकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे काफी जोर होगा। तो इसके चलते जो चीन का वर्चस्व इन देशों के ऊपर बन गया है उसको कम करने में बिम्स्टेक काफी सहायक हो सकता है। जहां तक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है दूसरे देशों का सार्क के तहत वो बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से सार्क के जो इनिशिएटिव्स थे उसको टालता रहा और आखिरकार ये जो रीजन है इसके देशों ने ये उचित समझा कि बिम्स्टेक के अंदर अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाई जाए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई इसमें रोल होगा और ना ही कोई देश चाहेगा कि पाकिस्तान को इसमें सम्मिलित किया जाए।
जी अनिल जी, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत मित्रवत लगातार संबंधों को विस्तार देता है, विशेषकर बीते एक दशक में रक्षा क्षेत्र में अनेक पहल की गई हैं। तो आज जो सम्मेलन हो रहा है उससे हम इन देशों के साथ आगे के लिए और क्या उम्मीदें कर सकते हैं?
जैसे कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आज फिर कहा कि बिम्स्टेक के तहत एक तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और दूसरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है लेकिन इसका समन्वय सागर के विजन से होना चाहिए
जी।
सागर का विजन जो है वो सबकी सिक्योरिटी एनहांस करने का एक लक्ष्य है और इस रीजन के लिए भी और फिर इंडियन ओशन के जो दूसरे छोटे देश हैं उनके साथ भी सागर का विजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर केंद्रित है और अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल में जो अभी तक गतिविधियां हुई हैं इन देशों के बीच, काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत, और इसका जो पोटेंशियल जो था वो अभी तक बिल्कुल अंडर रियलाइज था। अभी धीरे धीरे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और सभी देशों को लगता है कि जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है बिम्स्टेक का उसको आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, और उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको आगे बढ़ाने में सभी सहमत हैं। तो हमने कुछ प्रोग्रेस उसमें देखी है और आगे चलकर और भी प्रोग्रेस होगी।
जी वाधवा जी, दुनिया की करीब 25% आबादी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रहती है। प्रगति, विकास तथा सहयोग के क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बिम्स्टेक सम्मेलन कितना फायदेमंद हो सकता है?
तो बिम्स्टेक के सिद्धांत जो हैं, एक तो यह समान संप्रभुता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और राजनीतिक स्वतंत्रता का पालन करना भी बिम्स्टेक का प्रमुख सिद्धांत है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जैसे कि आपने कहा, दुनिया की आबादी का 1/5 जो भाग है इसके आसपास ये 7 देशों में इसकी पॉपुलेशन रहती है, और उनकी जो संयुक्त GDP है वो भी करीब $2.7 बिलियन है। लेकिन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी इन सभी देशों का जो औसतन आर्थिक विकास था वो 4% या 7.5% के बीच में रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी सारे देश ऐसे हैं जो काफी तेजी से विकास की ओर अग्रसर हैं, और इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में काफी प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हैं। विश्व का 1/4 व्यापार बंगाल की खाड़ी से जरिए होता है, और खाड़ी में विशाल प्राकृतिक संसाधन भी हैं। तो इसलिए अगर ये देश चाहें तो अपने आप को और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये बिम्स्टेक का एक महत्व है, और इसका एक अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ कि ये जो अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है ये सभी देशों को अब समझ में आ चुका है, और अगर कोई विकल्प इस तरह का नहीं होता है तो इनकी आगे जो प्रगति है उसमें बाधाएं आएंगी। तो ये बिम्स्टेक जो है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है
जी।
तो आगे चलकर सभी समझते हैं कि उनको सहयोग करना ही चाहिए बिम्स्टेक की तरह।
जी अनिल जी, बिम्स्टेक वैसे तो मतलब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत जिस तरह से अपना आर्थिक विकास करना चाहता है तो समुद्री व्यापार का अपने आप में एक इसमें महत्वपूर्ण रोल है, और ऐसे में मेडिटेरियन सी की भी काफी इम्पोर्टेंस जुड़ जाती है साथ में। तो भारत सभी के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहता है, दोनों को मिलाकर के कुछ आगे की राह बन सकती है क्या भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए?
जी बिल्कुल, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार बढ़ेगा उससे निवेश भी बढ़ेगा, और जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है जो कि हमारे जयशंकर जी ने आज कहा अपने संबोधन में, तो उससे जो कनेक्टिविटी सोसाइटल एक्सचेंजेस हैं उसमें जरूर बढ़ावा मिलेगा, और जो सोसाइटल एक्सचेंज के थ्रू सभी देशों में उन्नति होगी और प्रगति होगी।
जी अनिल जी, बिम्स्टेक देश आज भारत की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, खासतौर पे जो देश अभी कुछ परेशानियों से गुजरे हैं, खासतौर पे अगर हम दक्षिण पूर्व देशों की बात करते हैं और भारत से सहयोग की अपेक्षा भी रखते हैं, तो भारत इनके साथ में जुड़ा भी रहा है, लेकिन उम्मीद हम भी उनसे करते हैं कि कुछ ना कुछ प्राप्त करने की। तो इस तरह के सम्मेलन आगे की राह किस तरह आसान बनाएंगे?
जो सदस्य देश हैं इन्होंने भविष्य की राह खुद ही चुन ली है, और जैसे कि समुद्री परिवहन में सहयोग का समझौता जो है
जी,
जो कि अगले समिट में साइन होगा, और दूसरा जो आर्थिक जो चिंताएं हैं बिम्स्टेक के देशों के लिए
जी,
उनसे उभरने का एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर बिम्स्टेक के तहत ये देश आपस में सहयोग करें। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि
जी,
कई देशों ने इस बात का जिक्र किया है कि समय आ गया है कि इंडोनेशिया को अपने यहाँ एक पर्यवेक्षक देश के तौर पर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया आसियान का एक प्रमुख देश है और बिम्स्टेक के बाकी देशों की तरह ही वो समान भू राजनीतिक दर्जे में आता है। पर इस पर आगे चलकर सहमति बनेगी या नहीं ये देखने की बात है, अगर हो सकता है तो फिर बिम्स्टेक एक और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा।
जी अनिल जी, हमसे चर्चा करने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय सहयोग में बिम्स्टेक के महत्व पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है eirnstalks@gmail.com।